Jaya Radha Madhava Kanja Vihari Jaya Radha Hare Sotra Shita Shushima is Divine Grace. Desi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Islam Beauty Founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki. Samaved Gaura Bhakta Vrinda Ki.
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा
श्रील प्रभुपाद के ध्यान पूर्वक सुनिए अनुवाद। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्मक के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान उनके आसन के सांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने आसन के सांशों से अभिन्न है। वे अच्युत आदि तथा असीम है एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्रापो तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रह ही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हरेक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग है, मैं सुबह इस श्लोक को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी कि क्या बोला जाए। तो हम कुछ चैतन्य चरितामृत से कुछ श्लोक सीक्वेंस रीड करेंगे इससे जो संबंधित हैं। तो ये जो प्रसंग है जहाँ उद्धव और विदुर हम फिर से रिकैप करते हैं, पीछे जाते हैं, है ना। जब हम आगे बढ़ते हैं पीछे की चीजें भूलते रहते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि क्या प्रसंग चल रहा है और ये चर्चा कौन से दो महान विभूतियों के बीच में हो रही है। तो उद्धव और विदुर आपस में चर्चा कर रहे हैं और विदुर के अंदर भगवान के बारे में जानने की बहुत बड़ी उत्कंठा है। तो ये कि ये योग्यता है कृष्ण के बारे में जानने के लिए, हमें उत्कंठित होना चाहिए। उत्कंठित मतलब जैसे उत्कंठा शब्द है, जैसे श्रवण कैसे करना चाहिए व्यक्ति को, उत्कंठा, कंठा में से कंठा, कंठ को ऊपर करके सुनो। हम क्या करते हैं, कंठ को नीचे करके रुक जाते हैं। जो मछली होती है वेल मछली, ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, ऊपर आती है नीचे जाती है। तो हमारा जो श्रवण है या हमारा जो हरिनाम का जप है, और उस मछली की भांति हैं। हमारा कंठ सदैव कैसे होना चाहिए ऐसे पूछा, तो उससे पता चलता है कि हम सही में बहुत उत्साहित हैं, लालायित हैं, उत्कंठित हैं। तो यही एकमात्र योग्यता है। शुकदेव गोस्वामी बैठ गए व्यास आसन पर, ये विधि थी, जैसे श्लोक में विधि शब्द आया है सर्विधम, हाँ मतलब विधि के अनुरूप उन्होंने उन सारी राजकुमारियों को स्वीकार किया रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर। तो वैसे ही जब परीक्षित महाराज के जीवन में इतना बड़ा संकट आया तो विचलित नहीं हुए। विचलित कब होते हैं हम? जब हमारा मन कृष्ण में नहीं लगता। हमें अपने जीवन की समस्याएं बहुत बड़े महसूस होती हैं। कब? जब हमारी कृष्ण चेतना छोटी होती है, कृष्ण भावना बहुत निम्न धरातल पर होती है, तो लाइफ में आने वाली छोटे से छोटी समस्या भी पहाड़ के समान महसूस होती है हमें। हाँ, छोटी छोटी चीजों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी कृष्ण चेतना में क्या है? वीकनेस है, कमी है। तो कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना जितनी अधिक उन्नत होगी, हाँ हमारी जो चेतना है उतनी अधिक इस संसार के ताप, इस संसार के स्ट्रगल्स हमें बहुत छोटे महसूस होंगे, हम उससे विचलित नहीं होंगे। यही तो परीक्षित महाराज की खासियत थी। परीक्षित महाराज के जीवन में इतना बड़ा आघात आया कि मृत्यु खत्म होने वाला है लाइफ अभी, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं है। हमें कोई बीमारी आ जाती है बड़ी तो हम कितने भयभीत होते हैं, कितने लोगों को फोन करेंगे, एसएमएस करेंगे, डॉक्टर्स के पीछे भागेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे हम, और टेंशन में रहेंगे। टेंशन को जन्म लेते हुए शुरू हो जाता है। पहले बच्चों को टेंशन नहीं था, अभी बच्चों को भी क्या है, टेंशन होगी शुरू हो गया है। स्कूल में जाते हैं, घर आते तो टेंशन, हाँ स्कूल जाना है टेंशन है उनके लिए। तो परीक्षित महाराज एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बचपन से ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना सीखा था। यही तो प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारम आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवतान्यः, कि कुमार अवस्था से बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति का हमें अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के स्मरण करने का अभ्यास अपने जीवन में उचित ढंग से नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण होना असंभव है। अभी हम तो सोचते हैं कि अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ में जपमाला है, बाएं हाथ में मोबाइल है, तो कौन से हाथ का खेल होना चाहिए? हमारे राइट हैंड का। बाएं हाथ तो माया नचा रही है हमें मोबाइल के सहारे। जितना अधिक हम फीडबैक को हाथ में नहीं रखते, उससे अधिक किसको हाथ में पकड़ते हैं? मोबाइल को पकड़ते हैं। जितना अधिक उसका जब हम तुलसी का स्पर्श करते हैं तो हम शुद्ध होने लगते हैं, तो लेकिन जितना अधिक हम मटेरियल एनर्जी का स्पर्श करते हैं, ये इसमें शास्त्र कहते हैं, इसमें रजोगुण, ये जो मटेरियल एनर्जी है, गैजेट्स है, इसमें रजोगुण इनबिल्ट है। क्या है रजोगुण? इनबिल्ट है। ऐसे नहीं कि इसमें सतोगुण इनबिल्ट है, नहीं, तुलसी में क्या है, शुद्ध सत्व इनबिल्ट है। भागवतम चैतन्य चरितामृत में क्या है, शुद्ध सत्व इनबिल्ट है। भक्तों में क्या है, जो उन्नत भक्त है, शुद्ध सत्व है या सत्व गुण है। तो जब हम उनके संपर्क में आते हैं इन वस्तुओं के, तो हम न चाहते हुए भी सत्व गुण या शुद्ध सत्व का अनुभव करते हैं। जैसे हरिनाम चिंतामणि में भक्ति रूप ठाकुर कहते हैं, जो उन्नत वैष्णव होते हैं वो नजदीक भी होते हैं तो उनके शरीर से कृष्ण भावना झलकती है, निकलती है, हम अनुभव करते हैं जब हम उनके करीब होते हैं, भक्ति रूप ठाकुर लिखते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो वस्तुएं हैं उनमें शुद्ध सत्व या सत्वगुण का वास्तव्य है जब हमारे जैसे रजत तमोगुण में लिप्त जीव उसके संपर्क में आते हैं तो प्रकाश अनुभव करते हैं। और ये जो गैजेट्स हैं जिनमें रजोगुण इनबिल्ट है तो इनके जितना अधिक संपर्क में हम रहेंगे उतना ही अधिक हमारे चेतना में हमारे हृदय में केवल 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 रजोगुण की वृद्धि होगी। किस चीज की? रजोगुण। क्या रजोगुण का लक्षण क्या है? व्यक्ति हमेशा चंचल रहता है और भोग करने की तीव्र लालसा उसके हृदय में होती है। स्त्री को पुरुष के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण और पुरुष को स्त्री के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण, ये रजोगुण का प्राय मुख्य लक्षण है। रजोगुण का मुख्य लक्षण यह है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करने का अभ्यास बहुत गंभीरता से करना चाहिए। बाएं हाथ का खेल नहीं समझना चाहिए, ये नहीं है। तो आगे तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा ऐसे अनियमित, ऐसे कोई एक शब्द यूज किया है प्रभुपाद ने, मैं भूल गया, कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण होना असंभव है। इसलिए हमें स्वार्थी बनना होगा। कुछ चीजों में हमें क्या करना होता है? अपने स्वार्थी होना होता है। किस चीज में? विशेष रूप से अपना साधना है, अपना सेवा आदि है, उसमें हमें स्वार्थ बनाए रखना चाहिए। अपनी साधना में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, वो हमारा धन है। साधना क्या है? वो धन है जिससे आप दूसरा धन खरीद सकते हो। और वो कौन सा धन है? कृष्ण प्रेम धन। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है अंत्य लीला में, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक ये हो जाते हैं, दयनीय अवस्था स्वीकार करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, गिड़ गिड़ाते हैं। आप उनके जो पार्षद भक्त हैं उनके चरणों में वो कहते हैं कि दास करे नाही मोर प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन। कहते मेरा जो जीवन बहुत दरिद्रमय है, मैं मुझसे अधिक भिखारी कोई नहीं है। कौन अपने आप को भिखारी कहना चाहेगा? कहना चाहते हैं हम नहीं, भिखारी शब्द सुनना भी हमें अच्छा नहीं लगता, भिक्षु शब्द सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाही मोरा प्रेम धन दरिद्र मोरा जीवन, मेरे पास कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में आसक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए मैं इस संसार का सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति हूं। तो कोई कहेगा कि क्या क्या चाहिए फिर आपको? कहते हैं मुझे ना नौकरी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। दास करे वेतन मोरे देह प्रेम धन, मुझे आपका ना सर्वेंट बना लो, मुझे आपका दास बना लो। और दास बनकर मुझे मैं फ्री की सेवा नहीं करना चाहता। कौन करना चाहता है फ्री की सेवा? हम कुछ भी फ्री नहीं करना चाहते। हम भगवान के टेंपल मंदिर आते हैं तो भी भगवान से कुछ आकांक्षा करते हैं, है कि नहीं? किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो भी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दास करे वेतन मोरे देह प्रेम धन, मुझे दास बनाओ और वेतन में सैलरी क्या दो? प्रेम धन दे दो, कृष्ण प्रेम रूपी जो धन है। तो इसलिए हमें इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा नमे विदु स्वार्थ गतिमिह विष्णु। इस संसार के दुराचारी मूर्ख लोग अपने स्वार्थ को नहीं जान रहे हैं। उनका स्वार्थ क्या है? विष्णु है, कृष्ण है, जिनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार से जब हमारी कृष्ण भावना बहुत उन्नत होती है, जब हमारे हृदय में हमारे मन में सदैव कृष्ण का स्मरण उठता है तो इस संसारी वस्तुओं से व्यक्तियों से समस्याओं से हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। इसलिए तो भगवान कहते हैं भजते माम दृढ़ व्रता सततम कीर्तयन्तो माम यतत तस्य दृढ़व्रता। तो भगवान कहते हैं जो रियली सदैव मेरा स्मरण में निमग्न रहता है वो वास्तव में एक प्रकार से भजन में दृढ़ होता है, या दृढ़ भावना से मेरा भजन करता है। तो परीक्षित महाराज बहुत अधिक उत्कंठित थे और शुकदेव गोस्वामी भी बहुत अधिक उत्साहित थे। हाँ, जब महान भक्त को जो भगवान से बहुत अधिक प्रीति रखता है उसको जब कृष्ण का गुणगान करने का मौका मिलता है तो वो एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसका हृदय हमेशा भर उठता है। जैसे कई बार हमें बहुत दुख होता है तो हम भी क्या करते हैं, रो पड़ते हैं। कोई बहुत गहरा दुख होता है थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर बीच बीच में क्या होता है अनकंट्रोल्ड रोना आता है, बीच में रोते फिर कंट्रोल करते फिर रोना आता है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं जिनको कृष्ण से बहुत अधिक प्रीति है उनके हृदय में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इतने अधिक भरे होते हैं कि वो बाहर आना चाहते हैं। कहाँ आना चाहते हैं? बाहर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मुझे कभी बोलने से बंद मत करो। प्रभुपाद कहा करते थे कि मुझे हमेशा बोलते रखो। अब प्रभुपाद किस किस माध्यम से बोलते थे? स्वयं रोज कई घंटे लेक्चर देते थे, मॉर्निंग वॉक में डिस्कशंस करते थे, रूम कन्वर्सेशंस से बड़े बड़े लोगों से मिलते थे और सुबह शाम कथाएं करते थे और दिन भर रात्रि में ग्रंथ लिखते थे। मतलब प्रभुपाद कहते हैं मैं बोल रहा हूं और यही बेस्ट वे है कृष्ण भावना भावित होने का। कृष्ण भावना भावित होने का फास्ट वे क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जिसको भी मिलते हो, जिसके भी संपर्क में आते हो, उसकी गर्दन पकड़ो और किसके बारे में बोलो? कृष्ण के बारे में। इसलिए एक भक्तों को सदैव तत्पर होना चाहिए भगवान के बारे में बोलने के लिए। और हमें पता चलता है यदि हमें कहा जाए प्रभु जी आप थोड़ा ना कृष्ण के बारे में बोलिए, अरे कृष्ण के बारे में क्या बोलूं मैं? कई बार भक्त आते हैं ना आपके पास, प्रभु जी आप तो इतने महीनों से मंदिर जा रहे हैं, पहले तो आपके गले में दो माला राउंड करती थी, अभी मैं देख रहा हूँ क्या एक राउंड बढ़ गया, और रोज तिलक भी लगाते हैं आप, पूरा नाक के आगे तक होता है, फिर आप पहले पैंट शर्ट में आधे दिखते थे, अभी वैष्णव वेशभूषा में ज्यादा दिखते हैं, और मैं रेगुलर आपको देखता हूँ प्रोग्राम में। तो बताइए थोड़ी सी आपकी कृपा चाहिए। क्या चाहिए? हम जाते हैं ना भक्तों से प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। क्या कृपा करेगा? कृपा का मतलब क्या है? साधु जब कृपा करता है तो अपने वाणी के द्वारा। प्रभुपाद ने कहा हम आशीर्वाद गुरु नहीं है। आशीर्वाद गुरु पता है आपको? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जब गोद्रुम द्वीप में रहा करते थे मायापुर नवद्वीप में, तो रोज कई सारी स्त्रियां वहां की और कई सारे लोग गांव के लोग वो आते थे प्रणाम करने, तो भक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज और उनके चरण स्पर्श करने आते थे। हमें लगता है साधु के चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद लेना बस यही काफी है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है मुझे उस साधु से। तो लोग चरण छूना चाहते हैं और भारत में सभ्यता है। तो जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज क्या करते थे, कोई आने वाला होता था तो कपड़ा लेते थे और अपना पांव पूरा बांध देते थे राउंड, जैसे सॉक्स पहनते ना पूरा ऊपर तक, वो तो लंगोट या टोपी पहना करते थे या छोटे से वस्त्र, तो पूरा रैप करते थे और कहते थे आपको आशीर्वाद ही चाहिए तो यहाँ बहुत सारे आशीर्वाद गुरु हैं जो हाथ खड़ा करके बैठे हैं, जाओ उनके पास और आप क्या करो आशीर्वाद प्राप्त करो आशीर्वाद। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने कहा महाराज बाबा जी महाराज, और वो बहुत सिद्ध महाराज थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, कि आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपना जो कॉपी ने अपना जो सैफ्रन कपड़ा है वो निकाला और कहा ये रहा मेरा आशीर्वाद। मतलब तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो क्या धारण करो, ये वैराग्य के वस्त्र धारण करो। उसने तुरंत कलकत्ता भाग गया। सुन के कहां भाग गया? कलकत्ता भाग गया। वैसे ही एक बार श्रील प्रभुपाद अमृतसर से ट्रेन से जा रहे थे और उनके साथ अपने दो डिसाइपल्स हुआ करते थे। प्रभुपाद हमेशा अपने सेवकों के साथ चलते थे, संग पार्षद था, पार्षदों के साथ। तो जब प्रभुपाद जा रहे थे तो एसी कोच में थे, तो वहां प्रभुपाद बैठे थे और उनके दो डिसाइपल भी बैठे थे, शायद फर्स्ट क्लास एसी जहां क्लोज रहता है पूरा ना। तो फिर दो तीन इंडियंस को पता चला स्वामी एसी भक्ति वेदांत ट्रैवल कर रहे सेम ट्रेन में। अच्छा, हम लाभ उठाते हैं, हम क्या करते हैं उनका आशीर्वाद। अलग अलग वाद होते हैं ना, मायावाद, कई सारे वाद है, वैसे ही आशीर्वाद। तो ये दो आए और वो प्रभुपाद की ओर जाने लगे। तो प्रभुपाद के शिष्यों को पता था ये इंडियंस ना हमेशा तंग करते हैं, उनको कुछ आध्यात्मिक चीज से लेना देना है नहीं। साधु यदि आपको कहे आशीर्वाद चाहिए तो साधु दे रहा है आशीर्वाद वाणी से। आशीर्वाद में साधु ने जो आपको कहा है उसका पालन करना बस, और कुछ नहीं। ये इसी में क्या है, भगवान की सारी ब्लेसिंग छुपी हुई है। भगवान बोलते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, साधु के माध्यम से क्या करते, बोलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जितना बोलना था उन्होंने कम बोला, कितने श्लोक बोले? 8। और जितना और बोलना था, उन श्लोकों का जितना विस्तार करना था, तो दूसरों का मुंह यूज किया। किसका? रस तत्व का विश्लेषण करने के लिए रूप गोस्वामी। दैन्य सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत का वर्णन सीखने के लिए सनातन गोस्वामी से। नाम महिमा का पूरा विस्तार करने के लिए हरिदास ठाकुर से। और कृष्ण तत्व आदि, कृष्ण का डिटेल वर्णन, राधा कृष्ण के लीलाओं का डिटेल वर्णन आदि का उन्होंने शिक्षा दी रामानंद राय से। तो मतलब भगवान बोलते किसके मुख से? भक्तों के मुख से। वैसे ही भगवान खाते किसके मुख से? ब्राह्मणों के। किसके? फायर और ब्राह्मणास। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से ये देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो साधु के वचनों का पालन करना है, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करना है। तो कोई व्यक्ति हमें कहता है कि हमें आशीर्वाद दो, या आशीर्वाद नहीं, हमें कृपा करो। तो कृपा क्या है? कि आपके जीवा में कृष्ण कथा होनी चाहिए, कृष्ण नाम होना चाहिए, हाँ, दूसरों को देने के लिए। और वही उस जीव के ऊपर क्या है? कृपा है। नहीं तो आपको कहा जाए प्रभु जी कृपा करो, हाँ कृपा है, चले जाओ ये लो, हाँ, कुछ नहीं। जब कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे कृष्ण कथा करो, कृष्ण के बारे में बोलो। रिसेंटली मैंने ये सुना था, रिसेंटली मैंने ये पढ़ा था, प्रभुपाद की उस लीला में ये वर्णन हो रहा था। इससे क्या है? मच्छिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परा कथयंतस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जैसे दधि मंथन करते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन। तो जैसे ही स्निग्ध स्वभाव वाले दो भक्त जब आपस में मिलते हैं, या उचित श्रोता और वक्ता जब आपस में उनका मिलाप होता है, और जब वो कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, तो उस चरणी में क्या निकलता है? क्या निकलता है? कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जब उस ट्रेन में थे, हम बाद में ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में थे तो ये दो इंडियंस आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जैसे खटखटाया, प्रभुपाद के शिष्य गए, देखा, अरे ये इंडियंस, और ये अमेरिकन से थे प्रभुपाद के साथ। उन्होंने कहा ये लोग ना प्रभुपाद को डिस्टर्ब करेंगे, और बीच बीच में वो लोग गर्दना ऐसे आगे करते थे ताकि स्वामी जी देख ले, अंदर से कौन देख ले? स्वामी जी। तो ये नहीं चाहते थे कि ये अंदर आए। तो प्रभुपाद मैंने देखा ये कौन है, तो वो लोग अंदर ऐसा मुंह किया तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है उनको आने दो, अभी मना कैसे करे, किसी व्यक्ति को आपने देखा है और आप चुप नहीं सकते, कुछ बहाना नहीं बना सकते, लेकिन हम कभी कभी बहाना बनाते हैं, देखते हुए भी हम क्या करते हैं अनदेखा करते हैं, ये हमारा चीटिंग टेंडेंसी है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा आने दो, आके वो प्रभुपाद के सामने बैठे। अभी सोचो जिस महाभागवत वैष्णव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से किया है, मोर सेनापति भक्त, और भविष्य पुराण में प्रभुपाद का वर्णन आया है कि भक्ति देवी कहती है कि मुझे पाश्चात्य जगत में ले जाएगा एक व्यक्ति आकर, तो ऐसे महावैष्णव जिन्होंने कृष्ण भावना पूरे विश्व में प्रदान की है कि ना बिना किसी भेदभाव के, उनके पास ये दो भारतीय आते हैं और आप सोचो क्या जिज्ञासा करते होंगे। वो आते हैं और कहते कि स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद क्या चाहिए, एक इंडियन कहता मेरे घुटने में बहुत दर्द है। प्रभुपाद को क्या कहता है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, आप ऐसा आशीर्वाद और ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे घुटने का दर्द खत्म हो जाए। तो प्रभुपाद ने कहा मेरा जो आशीर्वाद आपको सही में चाहिए, वो उठ के फिर प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, भक्त तो परेशान हो गए जब सुनकर, और प्रभुपाद भी, प्रभुपाद जैसे कई बार होता है ना कि आपके पास बहुत उन्नत चीज किसी को देने के लिए है और आप उस व्यक्ति को देना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है आपसे बहुत बहुत ना के बराबर वस्तु की मांग करता है। तो वैसे ही प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, अपने वाणी से, अपने ग्रंथों से, अपने भक्तों से, हर प्रकार से कोई भी व्यक्ति संपर्क में आया है उसको कृष्ण भक्ति दी है। तो प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, तो उन्होंने अपने दो शिष्यों की ओर देखा और अपना हाथ करते हुए कहा ये मेरा आशीर्वाद है, ऐसे बनना पड़ेगा, आपको क्या बनना पड़ेगा, ऐसे बनना होगा, यही मेरा आशीर्वाद है, मतलब ऐसे शरणागत कृष्ण का सेवक बनना पड़ेगा, यही मेरा आशीर्वाद है। तो वास्तव में साधु क्या चाहते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए साधु या वैष्णव की तुलना उनकी जो महिमा है देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ है। हाँ, भागवत की 11वें स्कंध में वर्णन आता है कि देवतागण तो बिजनेसमैन की तरह डील करते हैं, ये अर्पित करो तो ये ले जाओ, पता है यहाँ पैसे रखो ये ले जाओ, वैसे ही है देवताओं का क्या है। हाँ, जैसे वहां नंद महाराज और इंद्र की पूजा में थोड़ा पूजा नहीं किया, इतने साल से कर रहे हैं, एक बार मिस कर दिया तो क्या हो गया। देखो सोचो कितना रिस्क है देवताओं की पूजा में है, कितना रिस्क है, इतने सालों से आपने किसी से इतना प्रेम किया और थोड़ी एक छोटी सी चीज के लिए गलती कर दी, भूल गए तो पहाड़ पहाड़ नहीं पूरा पहाड़ तो भगवान ने पकड़ा था, आप पूरा वर्षा हो जल वर्षा मतलब मृत्यु दान सीधा, क्या ये छोटे से गांव के लोग अपने आप को समझते क्या है, गोकुल महावन के 500,000 जितने भी लोग होंगे अभी उनको मृत्यु दंड तो दिखाता हूं मेरा जो सामर्थ्य है। सोचो देवताओं ऐसी एटीट्यूड है, देवता भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, देवता का भगवान की क्या है मिश्र भक्त है, मिश्र भक्त मीन्स उनको थोड़ा पद पोजीशन ऑपुलेंस भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। हाँ, इसलिए तो लक्ष्मी के साथ प्रॉब्लम है, लक्ष्मी का वृंदावन में प्रवेश क्यों नहीं है, दोनों हाथों में क्या रखना चाहती है सिंहासन में दोनों हाथ, ऐसे नहीं विनम्रता का भाव लेके आएगी नहीं, वो अपने ऐश्वर्य को त्यागना नहीं चाहेगी, दोनों चाहिए, मुझे गोपियों के जैसे कृष्ण के रास लीला में भाग भी लेना है और अपने हीरे जवाहरात मोती माणिक्य और अपना जो भाव है उसको छोड़ना नहीं है, तो ये ऐश्वर्य भाव कहते हैं। तो देवता का भी वो जीव जो भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ भौतिक भोग अमाप मात्रा में भी चाहते हैं, कंट्रोल करना भी चाहते हैं, दोनों चीजें। तो भगवान कहते ठीक है ले लो ऐश्वर्य। इसलिए तो देवता कभी कभी वो परेशान रहते हैं, अरे शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भजन करना है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं नहीं चाहिए मुझे कुछ और, मैं तो नंद महाराज के आंगन में या फिर वृंदावन के किसी स्थान में एक पत्थर बनना चाहता हूं। इसलिए वो वृंदावन में क्या बने, पहाड़ बने। इच्छा क्या थी, थोड़ा सा पत्थर बन जाओ, लेकिन क्या बने, पहाड़। कौन सा पहाड़, बरसाना का पहाड़। कौन सा पहाड़, हाँ जिसमें चार भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, ब्रह्मा के चार मुंह है ना, तो वैसे ये चार गढ़ है बरसाना। आप जाते हो चारों के ऊपर उन्होंने लीला की भगवान ने। एक बार ब्रह्मा ने कहा कि हे कृष्ण आप मेरे ऊपर कुछ चरण भूली रखी है, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें पहाड़ी बना देता हूँ। फिर मेरे भक्तों के संग में, गोपियों के संग में, सबके संग में प्रेरणा करता हूं आपके ऊपर। इस प्रकार से वो ये कामना करते हैं कि मुझे क्या बना दो, छोटा सा ब्रज में छोटा सा एक स्थान प्रदान करो। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवतागण भी शुद्ध भजन करना चाहते हैं। शिवजी महादेव भी क्या करना चाहते हैं, ब्रज में शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए तो वो अपने साथ कुछ ज्यादा गैजेट्स नहीं रखते। शिवजी के पास क्या चीज है, डमरू मृदंग कीर्तन के लिए इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो कीर्तन का इंस्ट्रूमेंट उनके साथ है और हाथ में जप माला है और निरंतर क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे शिवजी भी वृंदावन में नंद गांव में नंदेश्वर पर्वत है। सोचो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग और हमारे क्या तुलना की जाए। हम अपने आप को सिकंदर से भी बड़ा समझते, अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी क्या है, अपने घर में अपने आप को बड़ा समझते, छोटे से घर के सिंहासन पर बैठते तो अपने आप को क्या समझते, राजा। टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं तो सोचते हैं बहुत बड़ा कंट्रोलर हो। ईश्वर हम अहम होगी बलवान अहम सुखी, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कहते कि हम सबके अंदर ईश्वर और भोक्ता बनने की भावना है और वो इजीली जाएगी नहीं। इसलिए हमारे ऊपर क्या चाहिए, हाँ साधु और गुरु की कृपा चाहिए। साधु गुरु कृपा नहीं तो उपाय, साधु और गुरु की कृपा के बिना हमारी गति नहीं है। इसलिए साधु का जो आशीर्वाद है वो यही है उनकी वाणी। तो परीक्षित महाराज बहुत उत्कंठित थे और शुकदेव गोस्वामी भी उनको निरंतर कृष्ण की धारा में स्नान करा रहे थे। हम क्या, हम आश्रम करना चाहते हैं, आश्रम करना थोड़ा सा शॉर्टकट, भागवतम में आना भी है तो कैसे, आश्रम के बाद ही थोड़े समय के लिए हमें वहां रहना है, भागना है, टाइम खत्म होने से पहले। तो हम केवल इस भावना से कृष्ण कथा अटेंड करेंगे कि टाइम आगे पीछे हो रहा है, तो केवल जीवन भर टाइम ही आपको आपके जीवन में बना रहेगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और इस श्लोक में उद्धव और विदुर, देखो ट्रैवलिंग के लिए गए विदुर, उन्होंने सोचा बहुत हो गया राजपाट अभी चलो बाहर। इसलिए तो छोटे से बच्चे प्रहलाद स्कूल से आए वापस तो सबसे पहली चीज हिरण्यकश्यप ने पूछी, बेटा क्या सीख के आए हो, तो उन्होंने कहा जो भौतिक में बहुत अधिक लिप्त है उनको अपने ग्रह में यदि जीवन का त्याग करके वन में, वन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, वन में जाना चाहिए मीन्स वृंदावन जाना चाहिए। आप सोचो कितनी बड़ा बुद्धिमती का काम है। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को ये कहा कि वन में निकल जाओ और हम अपने घर से बाहर कृष्ण कथा सुनने के लिए आते नहीं, अपने रूम से बाहर आने निकलने के लिए मुश्किल होती है। और वही चीज विदुर ने देखी, विदुर ने देखा कि यहां तो हस्तिनापुर में जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं, जिनका मैं गाइड के रूप में हूं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि, वो तो कृष्ण भक्ति से भिन्न है, वो तो केवल भौतिक चीजों में लिप्त रहना चाहते हैं, तो ऐसे अवैध लोगों का मुझे संग नहीं चाहिए, मैं निकल जाता हूं यहां से। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार, चाहे वो हमारे कितने ही प्रियजन क्यों ना हो, सगे संबंधी, भार्या आदि। मैं कल प्रभुपाद लीलावत पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आ रहा था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने अपना लखनऊ में व्यापार शुरू किया, बहुत बड़ा बिजनेस, कई लाख रुपए का एक केमिकल फैक्ट्री डाल दी, दवाइयों की फैक्ट्री, और कुछ महीने चली और फिर बहुत बड़ा घाटा, नुकसान से वो बंद हो रही थी और उनको अकेले वहां रहना पड़ता था। और वो क्यों कर रहे थे? परिवार का भरण पोषण हो, ताकि वो लोग भी भक्ति करें। लेकिन जब रात्रि के ट्रेन से वो कोलकाता जाते थे तो उनके बच्चे पत्नी को कोई लेना देना नहीं है भक्ति से, भक्ति व्यक्ति कुछ करनी नहीं है, वो तो अपनी चाय और बिस्कुट खाने में मग्न है। ऐसी भक्ति वेदांत अभय चरण वहां जाते भी थे घर में, तो घर के आसपास लोगों को बुलाते थे, गीता पर चर्चा करते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन पत्नी फर्स्ट फ्लोर में जाके बैठते थे। तो उन्होंने कहा, मैं जिनके लिए मर रहा हूं, जिनके लिए इतना कष्ट उठा रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो आप हृदय द्रवित हो जाएगा, कितना कष्ट उठाया है प्रभुपाद ने अपने ग्रस्त जीवन में भी। उन्होंने कहा कि जिनके लिए मैं इतना कष्ट उठा रहा हूं, जिनके पालन पोषण के लिए इतना कार्य कर रहा हूं, और उन लोगों को मेरे कृष्ण भक्ति की कोई चिंता ही नहीं है, तो फिर उन्होंने एक चीज बोली, मैं भी उनकी कोई चिंता नहीं करूंगा, हाँ अभी मैं भी दृढ़ हो जाता हूं। मैं क्यों अपने हृदय से कृष्ण के स्मरण को गवाऊं? कहते मैं ऐसे लोगों की सेवा करने में जीवन बिताऊंगा जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, विफले सेविनो कृपण दुर्जन, ऐसे विफलता से कृपण और दुर्जन लोगों की सेवा कर रहा हूं। तो फिर भी वो ट्राई करते रहे, लेकिन एक बार जब वो आए साउथ इंडिया से और वहां उन्होंने अपनी पत्नी को फिर से पूछा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? राधा रानी, राधा रानी, उनको कहा कि देखो आप थोड़ी सीरियस हो जाओ भक्ति में, तो वो तो बिल्कुल फिक्स है, मतलब इतनी हार कर चुकी थी वो कि एक बार प्रभुपाद बहुत थके भरे आए थे, वो अभी अपने घर मतलब इनके घर रहने के बजाय मायके चले गए थे कि मायके में काम नहीं करना पड़ता। तो ये जो प्रभुपाद अभय चरण भी वहां गए, उनके ससुराल क्या कहेंगे, गए तो वहां बैठी है सोफा पर पांव ऊपर करके, और जब इनको भूख लगी थी, भोजन का समय हो गया, तो इनको लगा कि स्वयं कुकिंग करके खिलाएंगे, तो नहीं, सारी चीजें जब इनके सामने प्लेट रखी तो सारी चीजें दुकान से लाई गई चीजें थी। और वो पड़ोसी प्रभुपाद ने कहा, इन्होंने कहा हद हो गई, ये बहुत अधिक अभी बिगड़ रही है, उसी समय प्लेट को साइड किया, कहा अभी तुम यहां मत रहो, अभी चलो अपने घर ले गए, कहीं तुम्हें सुधार नहीं हो सकता। फिर एक दिन उनको कहा कि आपको चूज करना होगा, मुझे आप मुझे सहयोग दोगी या नहीं, या चाय, आप चूज करो, टी और मी, चाय चाहिए या पति चाहिए, आप सोचो। तो क्या बोला उसने, चाय चाहिए। वो दोनों ने तो ये बोला कि मैं तो अपने जीवन में चाय को ही चूज करूंगी। तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी ने सोचा, स्वामी तो नहीं थे उस समय, अभय चरण प्रभु जी ने सोचा कि अभी क्या करना होगा, मुझे निकलना होगा। तो मैं देख रहा था कि कितने साल हो गए थे उनकी शादी को, तो कितने 36 ईयर, 36 ईयर हो गए थे उनके शादी को, उस समय अभय चरण ने सोचा कि अभी त्याग करता हूं। उस समय वो निकल पड़े घर से बाहर, कुछ नहीं लिया अपने साथ, धोती कुर्ता पहनते थे, धोती कुर्ता पहन के निकले। और पत्नी को हमेशा लगता था और पड़ोसियों को लगता था, जब थोड़ा वो टेंशन में आते हैं ना, वो बार बार जाते हैं, वापस आने वाले हैं। जैसे कई बार होता है ना, गुस्से में हम बाहर चले जाते हैं और फिर आते भी है घर में, तो घर वालों को लगता है कि रोज का ही ये तमाशा है, ये जाता है फिर वापस आता है। अभी पड़ोसी लोग, पत्नी, उनके बच्चे वृंदावन और ऐसे क्या नाम था उससे बच्चे का बोल के, हाँ, तो वो सब सोचने लगे कि हमारे पिताजी तो हमेशा जाते, आज भी वापस आने वाले हैं। तो प्रभुपाद निकले अपने घर से, 56 साल की या 53 या 54 साल की आयु थी उनकी, और फिर वापस अपने घर नहीं गए, वो गए झांसी। झांसी से फिर उन्होंने वापस अपने घर का चेहरा नहीं देखा, गए नहीं वापस। वहां से उनके बेटे आए, सब कुछ आया, उन्होंने कहा नहीं। तो इस प्रकार से जब हमारी कृष्ण भावना हमसे छीनी जा रही है, कृष्ण भावना में बाधा है, तो वो स्थान हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और शरणागति का ये पहला लक्षण है, आनुकूल्यश संकल्प प्रतिकूल्यश वर्जन। मतलब भगवत भक्ति में जो अनुकूल चीजें हैं उसको जीवन में स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है, जिनसे भगवत भक्ति में बाधा है, उनसे दूर हट जाओ, हाँ, उनको क्या करो, त्याग दो। प्रतिकूलस्य वर्जना, 6 प्रकार की शरणागति है, लेकिन अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है, 2 चीजें। अनुकूल चीजों को ले लो, अधिक से अधिक अनुकूल। भक्ति में शास्त्रों का अध्ययन करना अनुकूल है, बार बार भक्तों का संग करना, श्रवण करना अनुकूल है, सेवा करना अनुकूल है, हरिनाम का उच्चारण करना अनुकूल है, मंदिर आना अनुकूल है, और कई सारी चीजें अनुकूल, उनको हमें ढूंढते रहना चाहिए क्या अनुकूल है। और जो प्रतिकूल है, असत संग प्रतिकूल है, टेलीविजन देखना प्रतिकूल है, और बहुत सारी चीजें, न्यूज़पेपर पढ़ना प्रतिकूल है, 4 नियमों का पालन न करना प्रतिकूल है। तो इस प्रकार से इन चीजों से दूर रहेंगे तो हम भगवत भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी को बचाने का प्रयास करना चाहिए तो अपने कृष्ण भावना को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे खुद के हाथ से कृष्ण भक्ति छूट रही है, खुद के हाथ से ये अमूल्य हीरा प्रभुपाद और भक्तों ने हमारे हाथ में दिया है, वो धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल रहा है, तो हमें डरना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए लाइफ में। क्या डर? हमें डर नहीं है, हम कृष्ण भक्ति को, भक्तों के संग को, शास्त्रों के ना बहुत बहुत साधारण ले रहे हैं, बहुत चिप ले रहे हैं। इन चीजों में थोड़ी थोड़ी बाधा आती है, हमसे दूर हो जाते हैं, तो हमें डर जाना चाहिए कि नहीं, मेरा भगवत भक्ति खतरे में है, मुझे नीड है भगवत भक्तों की, उनके एसोसिएशन की, शास्त्रों की, मंदिर की, इस प्रोग्राम की, कृष्ण कथा की, भक्तों के संग में नाम संकीर्तन की, विग्रह के दर्शन की, डेलिशियस कृष्ण प्रसादम की, ये मुझे नीड है, ये चीजें मुझसे दूर हो रही है या मेरा रुझान कम हो रहा है, तो हमें डर हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। जब हम ऐसे भयभीत होंगे तो फिर हम पकड़ के रखेंगे, और कृष्ण भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कृष्ण देखेंगे कि इस भक्त के हृदय में रियली मुझे प्राप्त करने की या मुझसे संबंधित चीजों को प्राप्त करने की कामना है, तो कृष्ण हमें फिक्स रखेंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस श्लोक में वो जो 16,100 राजकुमारियां हैं, वो भी भौमासुर के या नरकासुर के कैद खाने में बंदिस्त थी, है कि नहीं? हम भी कैद खाने में यहाँ बंदिस्त है, और हमें भी किसने लाके रखा यहाँ, माया देवी ने, किसने? इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे जीव कृष्ण को भूलता है, माया उसकी गर्दन पकड़ती है, आगे से नहीं, कहां से, पीछे से। जब आपको बहुत नीचे दबाना है, यहां वहां फेंकना है, परेशान करना है, आगे से नहीं पकड़ती। जब मारना है तो आगे से, लेकिन कष्ट दे दे के मारना है तो क्या करना है, पीछे से। तो माया देने झापटिया देने, अचानक कोई पकड़, गर्दन पकड़ी आपकी किसी ने बचपन में, कई बार माता पिताजी गुस्से में आते थे, पकड़ते थे गर्दन। तो वैसे ही माया देवी गर्दन पकड़ती है और लाखी जगत में बंदिश करती है। जैसे गांव में जब संध्या हो जाती है तो गांव के लोग मुर्गिया का पालन करते हैं घर में, तो जब मुर्गिया जब घर में संध्या होती है तो उनको भी तो कहाँ रखना चाहिए, तो मुर्गियों को पकड़ते हैं, जो टोकरी होता है बड़ा बड़ा उसके नीचे डालते हैं, फिर टोकरी ऊपर से डालते हैं, और फिर सुबह उनको छोड़ना है जब जब थोड़ा सा वो आता है प्रकाश, तो टोकरी ऊपर करते, फिर वो मुर्गिया भाग जाते हैं खेलने के लिए या खाने के लिए। वैसे माया देवी हमें यहाँ जगत में लाके बांध देती है, और कितना सारा संघर्ष। तो वैसे नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को क्या किया था, बंदिश किया था। बहुत बेचारे दुखी थी, अपनी युवा अवस्था में थी, और उनके लिए तो कठिन था कि एक प्रकार से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। शास्त्र कहते कि कन्या एक रात्रि के लिए अपने घर से बाहर रहती है, प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, तो कोई उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। ये वैदिक कल्चर का स्टैंडर्ड था। तो उस समय जब ये नरकासुर ने बंदिश कर दिया था उनको, और ये जो युवतियां हैं ये भगवान के लिए हमेशा अपने हृदय में प्रार्थनाएं करती थी, तो इतनी गहरी प्रार्थनाएं थी जिन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भगवान को वहां आना पड़ा। इसलिए माया देवी के सामने या माया के सामने हम बहुत तुच्छ हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां करन्तिते। भगवान की ये जो शक्तिशाली प्रकृति है, नेचर, ये जो बहिरंग शक्ति है, ये बहुत पावरफुल है, जिसको लांघना हमारे जैसे सर्वसाधारण सामान्य जीवों के लिए असंभव है, भगवान कहते गीता में। लेकिन भगवान कहते कि एक उपाय है कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करेगा तो वो बहुत सरलता से इस बहिरंग प्रकृति माया को लांघ सकता है, और माया के विरोध में लड़ने के लिए हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, हमारे पास कुछ शस्त्र आदि नहीं है, लेकिन एक पावरफुल वेपन शस्त्र कृष्ण हमें देते हैं माया के साथ युद्ध करने के लिए। तो माया के साथ आप युद्ध कर रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि माया के सोल्जर्स कौन से हैं और मेरी ओर के सोल्जर्स कौन से हैं। तो कभी कभी हम प्रॉब्लम में बहुत अधिक फंसते हैं, भक्ति कठिन हो जाता है, माया के सोल्जर्स को अपने सोल्जर हम बना लेते हैं, और अपने जो सोल्जर्स है उनको सोचते कि ये क्या है, माया के। वैसे ही है, कभी कभी हम भक्तों से ईर्ष्या द्वेष बहुत करते हैं, जज करते हैं, कहते कि ये तो नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये रोज क्लास में ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछता रहता है, या फिर कई सारे प्रकार से हम भक्तों को माया के सोल्जर समझते हैं, और माया के सोल्जर्स को अपने हितेश समझते हैं, तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो माया, और कई बार माया के सोल्जर्स भी भक्तों के वेश में होते हैं, तो हमेशा बहुत सतर्क होना चाहिए। तो ऐसे माया के विरोध में लड़ने के लिए हमारे पास कोई योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, बल नहीं है, लेकिन एक बहुत पावरफुल अस्त्र हमें दिया है, और वो क्या है, प्रार्थना। क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना से बढ़कर कृष्ण को आकर्षित करने के लिए और माया के मुंह पर तमाचा मारने के लिए प्रभावशाली अस्त्र कोई और नहीं है। जितने भी, इसलिए तो वैष्णव प्रभु प्रभुपाद ने देखो अमेरिका माया के अड्डे में गए और सुंदर सी प्रार्थना लिखी कृष्ण के लिए, क्या कृष्णा आप मुझे कहां लेके आए हो, यहाँ तो सारे लोग रजत तमोगुण माया के प्रभाव में है और आप मुझे यहाँ ले आए हो। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली, क्या कि मेरा नाम भक्ति वेदांत है लेकिन मुझमें ना भक्ति ना ज्ञान है, लेकिन आपका जो नाम है उसमें मेरी प्रगाढ़ आसक्ति है। तो इस प्रकार की प्रार्थना उन्होंने कृष्ण के चरण में रखी और कहा कि मैं आपके हाथ का कठपुतली हूं, आप मुझे जैसे चाहे वैसे नचाओ। तो ये वास्तव में शरणागति का लक्षण है, एक प्रार्थना से भरे हुए हृदय का ये सार है कि वो कृष्ण के हाथ की कठपुतली बनना चाहता है। आप मुझे जैसे चाहे वैसे नचाओ, मेरे जीवन में जैसे आप आना चाहो, चाहे कष्टों के माध्यम से या जिस किसी माध्यम से, मैं आप उसको स्वीकार कर आपकी कृपा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो एक भक्त के पास अस्त्र होना चाहिए और वो पावरफुल अस्त्र है प्रार्थना। तो ये राजकुमारी के पास कुछ नहीं था, वो मैसेज भी नहीं आगे भेज सकती थी किसी के पास, यानी कि सारे राजकुमारियां हैं तो सारे फोन लेके पहुंची होगी वहां जेल में, स्पेशल फैसिलिटी होगी और कृष्ण को मैसेज करती रह गई होगी, है नहीं? उनका मैसेज कहां से जा रहा था? हृदय से। हाँ, पावरफुल जो एप्लीकेशन है, मैसेज के लिए एप्लीकेशन होते हैं ना, पावरफुल एप्लीकेशन क्या है? हृदय। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और कई सारी चीजें हैं, तो लेकिन पावरफुल एप्लीकेशन क्या है? हमारा हृदय। और उस हृदय से जब आप मैसेज भेजते हो, प्रार्थना रूपी मैसेज कृष्ण के चरणों में, तो कृष्ण तुरंत स्वीकार करते हैं और कृष्ण वेट करते हैं। तो ऐसे राजकुमारियों ने भगवान से दुख की भावना को लेकर प्रार्थना की, प्रकृष्ट रूपेण आर्त, आर्त मीन्स दुखी। प्रार्थना तो प्रकृष्ट बहुत अधिक रूप से हृदय में आर्त की भावना है, दुख की भावना है, उस भावना को भगवान के सामने क्या करना? प्रकट करना। इसलिए इस संसार में हमारी कोई, हम तो सबको सुनाना चाहते अपना सुख अपना दुख अपने हृदय की बात, लेकिन कितने लोग हैं हमारी चीजें सुनने के लिए? है, शास्त्र कहते हैं कि हर एक भक्त के पास अपना एक डिवोटी होना चाहिए जिसके पास हम अपना हृदय क्या करें? ओपन करें, हमारे हृदय के सुख दुख को हम उनसे शेयर करें। तो भगवान कोई नहीं है तो हमारे पास कौन है? कृष्ण है। और रोज अपने दुख आदि का निवेदन कृष्ण के पास करना चाहिए, भौतिक दुखों को नहीं, कि भगवान घुटना दर्द हो रहा है, ठंड आ रही है, पेट की बहुत समस्या चल रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, प्रॉब्लम तो हमेशा इस संसार में, लेकिन कौन से दुख? कृष्णा आपके प्रति मेरे हृदय में लव मात्र भी आसक्ति का उदय नहीं हो रहा है, इतने दिनों से आ रहा हूं, भजन कर रहा हूं, साधन कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। फिर राजकुमारी ने जब प्रार्थना की तो कृष्ण आ गए अपने अंतरंग शक्ति के साथ, कौन थी? सत्यभामा के साथ। और कैसे आए? गरुड़ के ऊपर आते ही पूरे नरकासुर का, नरकासुर का हरि बोल कर दिया, नरक कह सकते, नरक तो नहीं गए, भगवान के पार्षद है। मैं कल देख रहा था एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था तो उसने हेलमेट पहना था, तो मैं सोचता हेल हेल का मतलब हेलमेट तो वैसे ही जब भगवान पहुंचे वहां तो सबको उद्वस्त किया और फाइनली प्रवेश किया जहां ये सारी राजकुमारियां थी, और उनकी प्रार्थना को कृष्ण ने क्या किया था? सुन लिया था। तो हम बहुत बद्ध अवस्था में है, आपको लगता है कि आप जेल में हैं, लगता है, अनुभव है हमें कि रियली है कृष्णा आपकी जो दुर्गा देवी है ना उसके जेल में बंदिश तो हूं, और मुझे ना रोज तीर ताप बहुत सता रहे, ऐसे लग रहा है? नहीं लगता, तो हम बहुत तीव्रता से भजन करते, अभी तो ये माया देवी की जो गोद है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, ये संसार भाल अच्छा लग रहा है हमें। जब भगवान बहुत पीड़ा देंगे तब हम निकलने के लिए पीछे रहेंगे। जैसे कृष्ण क्या करते हैं, जैसे मैं हमेशा एक स्टोरी कहता हूँ, एक व्यक्ति की बहुत चार पांच बेटियां थी, सबकी शादी हो गई और फिर सारे जो दामाद आके घर में रहने लगे। अभी एक दिन गेस्ट को हैंडल करना ठीक है, दो दिन ठीक है, तीन दिन ठीक है, और कोई गेस्ट पूरे परिवार के साथ एक एक महीना आपके घर में रहे तो आप सहन कर सकते, बहुत कठिन है। तो यहाँ चार पांच बेटियों के सामने पूरा एक दो महीने तीन महीने, तो जो ससुर था उसने सोचा क्या करे, अभी तो कोई गेस्ट काम थोड़ी कह सकते, हरि बोल प्रभु जी चलिए नहीं कह सकते ना, उनकी जितनी मर्जी जब तक बैठे रहे। तो वैसे ही हुआ, तो उन्होंने सोचा कि क्या करे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटे को पूछा क्या किया जाए उपाय, इनको अभी बोल तो नहीं सकते। तो बेटा बड़ा चतुर था, उसने कहा उनकी जो फैसिलिटी है वो कम करते रहो, पहले भोजन में बहुत मसाले चीजें वैरायटीज हुआ करते थे, वैरायटी कम कर दी, और फिर कुछ जो बुद्धिमान क्या कहते हैं जमाई दामाद है वो समझ गए चाबी पाव निकालना होगा अपने पत्नी को लेके, तो नमक एक दिन तो नमक ही नहीं डाला भोजन में, कुछ लोगों को लगा कि अभी तो हो गया, तो कई सारे गए। तो एक दामाद बड़ा वो था, निस्तुर था, निस्तुर तो नहीं कह सकते, वो ठीक था, उसके जाने की कोई आकांक्षा नहीं थी, आप नमक कर दो कम या जो मर्जी कम कर दो, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो फिर ससुर ने सोचा ये ऐसे नहीं होगा, डंडा ही लेना पड़ेगा। जब डंडा लिया उसके बेटे ने, तो फिर चलती हो गई उनकी। तो वैसे ही है जो भगवान क्या करते हैं, माया देवी उनके एजेंट है, जो वो बेटा एजेंट था वैसे माया देवी बहिरंगा शक्ति, वो थोड़ा थोड़ा पहले भौतिक फैसिलिटी को डीलर कर देती है, शरीर में व्यादना देती है, मानसिक प्रबल देती है, संबंधों में प्रॉब्लम खड़ा कर देती है, ऐसे कई सारी चीजें करती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी तीव्रता क्या होनी है, संसार से बाहर निकलने की, संसार में भौतिक जगत से आप कहोगे कि पत्नी छोड़ के मंदिर आके रहो, नहीं, स्थाने सीता तनुवाग मनोवी, आप अपने स्थान में रहिए और भक्ति करिए। तो इस प्रकार से हमें भी सीख लेना चाहिए। तो ये सारी जो रानियां थी, जो राजकुमारियां थी, भगवान उनको आते हैं और उनका उद्धार करते हैं, और विधिवत मतलब विधि विधानों का पालन करते हुए उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और क्या था उनके पास कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, अब कृष्ण को पढ़ेंगे इस पास्ट टाइम को, कैसे नर भस्मासुर का वध किया, भौमासुर का, और इन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने कैसे स्वीकारा, तो उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें कहा है कि उनके आंतरिक हृदय से जो प्रार्थनाएं हैं जिनको भगवान ने स्वीकारा और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, जिसके द्वारा कृष्ण बाध्य हो गए उनके पास आने के लिए, और उनका हाथ पकड़कर अपने रानियों के रूप में उनको स्थान दिया। सोचो कितना बड़ा स्थान, कहां पड़े थे भौतिक जगत के जेल में, हम भी वैसे ही भौतिक संसार के जेल में हैं, लेकिन हमें भी कृष्ण अपने नजदीक स्थान दे सकते हैं जब हम अपने हृदय में ये दीनहीन की भावना को धारण करते हुए कृष्ण को प्रार्थना करें। और परम प्रार्थना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रार्थना का उच्चारण करें। और इस प्रार्थना को और अच्छे से करने के लिए और भावमय भावना से करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें वैष्णव गीत दिए हैं, जिनको हमें सीखना चाहिए और जिसका उच्चारण कृष्ण के हेतु गुरु वैष्णव के हेतु करना चाहिए, तो हम देखेंगे बहुत बड़ा बदल मेरे हृदय में जागृत हो गया है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, नित्याय गौर प्रेमानंद।